नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग की व्याख्या। और हमारे पिछले सिटिंग में हमने इस अध्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक लिया, जिसका भाग एक हमने लिया था, और आज हम इस श्लोक का भाग दो लेंगे। और इसके पश्चात अगले भाग भी इसके होंगे, क्योंकि आज हम केवल एक ही शब्द के ऊपर और वो है धर्मस्य। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद इस प्रकार से है, श्री भगवान ने कहा, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो यहां अर्जुन अब भगवान को अपना गुरु मान लिए हैं दूसरे अध्याय से। और भगवान यहां पर न केवल अर्जुन को जगत गुरु के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि इन श्लोकों में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम जो अवतार लेते हैं हर एक युग में, जो स्रोत हैं हर एक युग के युग अवतार के, लीला अवतार, पुरुष अवतार, मन्वंतर अवतार, गुण अवतार इत्यादि जितने अवतार हैं, उन सब के स्रोत वो अब ये श्लोक अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, न केवल मैं तुम्हारा परम मित्र हूं, न केवल मैं गुरु हूं, बल्कि मैं युगावतार भी हूं। तो आज के हमारे चर्चा के विषय, फिर से हम पिछले श्लोक से संबंध ये जानेंगे पहले, और आज हम केवल धर्मस्य शब्द की व्याख्या करेंगे। तो आपको यदि याद होगा, छठे श्लोक में भगवान अजन्मा होने पर भी जन्म क्यों और कैसे लेते हैं इसके विषय में बता रहे थे। तो ये विलक्षणता भगवान की, भगवान के अवतरण से ही हम समझ पाएंगे। भगवान का अवतरण अर्थात भगवान का अवतार, इसलिए भगवान यदि अपने विषय में नम्रता पूर्वक ये भी कह दें कि मैं जन्म लेता हूं, ये उनकी नम्रता है, क्योंकि जन्म तो हमारा होता है। तो भगवान नम्रता पूर्वक यदि ये भी कह दें कि वो जन्म लेते हैं, वास्तविक रूप में वो उनका अवतार होता है। और अवतार का अर्थ क्या है? जो अपने दिव्य धाम से नीचे उतरते हैं कृपावश, अहेतु की कृपा और स्वतंत्र इच्छा, आत्म मायया, ये शब्द यदि आपको याद होगा पिछले श्लोक से हमने लिया था, संभवा म्यात्म मायया। तो हम एक हमारे पिछले बुधवार का शॉर्ट रिकैप लेंगे पार्ट वन का, क्योंकि यदा यदा ही जो हमने ये तीन शब्द लिए थे इसे हम पूरा नहीं कर पाए थे, तो पहले हम यदा यदा ही को पूरा करेंगे और फिर धर्मस्य शब्द की व्याख्या क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो पिछले बुधवार को हमने यदा यदा का अर्थ समझा, जब जब, ही का अर्थ है निश्चित रूप से। तो यदा यदा ही का पूरा अर्थ हुआ, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब भगवान निश्चित रूप से प्रकट होते हैं। तो यहां महत्वपूर्ण बात समझने लायक है, जब जब और निश्चित रूप से, तो दोनों में इस भौतिक संसार में हम विरोधाभास देख सकते हैं कि यदि कोई चीज हमें कई बार करनी पड़े या नियमित रूप से करनी पड़े तो उसमें निश्चितता नहीं आती, कंसिस्टेंसी इन दिस कलयुगा इज वेरी डिफिकल्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स इज कंसिस्टेंसी। तो यहां भगवान जब जब, यदा यदा और ही निश्चित रूप से, ये दोनों बातें जो बोल रहे हैं इसमें हमें यह समझना है कि भगवान की कितनी कृपा केवल इन तीन शब्दों में छिपी हुई है कि वो आश्वासन देते हुए अपने प्रण के विषय में बता रहे हैं। जैसे कोई यदि कहे कि मैं निश्चित रूप से सुबह जल्दी उठूंगा, अगर कोई ऐसे बोल रहा है मैं निश्चित रूप से सुबह जल्दी उठूंगा, तो क्या मूड आपको समझ में आ रहा है उस व्यक्ति का? उसने कोई प्रण ले रहा है। अब यदि कोई 4 वर्षीय बालक ले ये प्रण, मैं निश्चित रूप से जल्दी उठूंगा, तो उसको हम इतना सीरियसली नहीं लेंगे। कोई वयस्क ले, उसको भी हम सीरियसली कब लेंगे? जब हम देखेंगे कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है। तो यहां भगवान अपने ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखते हुए अर्जुन को बोल रहे हैं और अर्जुन के द्वारा हम सबको, ही निश्चित रूप से जब जब आवश्यकता पड़ती है मैं प्रकट होता हूं। तो भगवान का प्रण कितनी पोटेंसी उसके अंदर होगी, भगवान के प्रण में। तो हमने यदा यदा का विच्छेदन करकर जब जब के पहले दो अर्थ समझे पिछली बार। एक जब का अर्थ भगवान कह रहे हैं जिस समय धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की प्रधानता होती है, जिस स्थान पर धर्म की ग्लानि, अधर्म की प्रधानता, निश्चित रूप से मैं प्रकट होता हूं। जिस रूप में आवश्यकता पड़ती है प्रकट होने की, उस रूप में मैं प्रकट होता हूं। हमने भगवान के दशावतार वो समझे, जिन गुणों के साथ आवश्यकता पड़ती है मुझे प्रकट होने की, उन गुणों के साथ मैं प्रकट होता हूं। तो जिस स्थान में, जिस समय, जिस रूप में, जिन गुणों के साथ, तो जब जब के ये चार अर्थ हमने फिर तुकाराम महाराज ने जो भगवान को विठल को इस सुंदर नाम से पुकारा विठलाई, जिसका अर्थ है वो विठल को अपनी माता के रूप में पुकार रहे हैं। तो हमारे आचार्यों ने भी भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता अपनी माता सब कुछ सर्वस्व माना है। तो हमने ये जो माता पिता का भाव है इस श्लोक के संदर्भ में समझने की कोशिश की कि जैसे माता पिता जब जब जरूरत पड़ती है तब तब वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं अपने बच्चों के लिए। कोई भी समय हो माता के विषय में, यहां पर यदि हम विठलाई ये जो भाव है तुकाराम महाराज का, इस भाव को यदि हम लें तो तुकाराम महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि हे विठल, मैं आपके बच्चे के समान हूं और आप मेरी आई मेरी माता के समान हैं। और जब भी एक बच्चा किसी परेशानी कठिनाई में होता है तो माता समय नहीं देखती, चाहे रात के दो ढाई तीन बज जाएं, समय नहीं देखती, स्थान नहीं देखती। जिस रूप में जिस गुण में उस बच्चे को आवश्यकता है अपनी माता और अपने पिता की, वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो यदा यदा ही ये जो श्लोक है और ये जो तीन शब्द हैं, इसमें हम सिद्धांत देख रहे हैं और भगवान का मातृ पितृ भाव ये दोनों व्यक्त हो रहा है इस श्लोक के अंदर। तो ये श्लोक इसके अंदर भगवान की ऐसी सूक्ष्म मधुर भावनाएं और सिद्धांत इन दोनों का समन्वय है। फिर हमने भगवान के इस भाव को समझने के लिए द थ्री सीसी रीजंस ये समझने की कोशिश की, कंसिस्टेंट कंसर्न, कंसिस्टेंट करेक्शन, कंसिस्टेंट कंपैशन। तो जो भगवान ने यदा यदा ही ये तीन शब्दों का उच्चारण कर अर्जुन को कहा, तो उसके द्वारा भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन मैं सभी बद्ध जीवों के लिए कंसिस्टेंटली कंसर्न रहता हूं, कंसिस्टेंटली उनको करेक्ट करने के लिए आता हूं और इनके पीछे मेरी भावना क्या है, कंसिस्टेंटली कंपैशनेट। परंतु हमारी अवस्था क्या है, भगवान का सीसी फॉर्मूला है, हमारा सीआर फॉर्मूला, कंसिस्टेंटली रिबेलियस, कंसिस्टेंट इन रिजेक्शन एंड कंसिस्टेंटली बिकमिंग राइवल्स। तो एक के बाद एक इस भौतिक संसार में रहते हुए बद्ध जीव जो है वो कंसिस्टेंटली नियमित रूप से भगवान के विरुद्ध ये सब कुछ करने पर उतारू रहता है। तो यदा यदा ही जीव और भगवान के बीच में जो स्पर्धा चल रही है इसको दर्शा रहा है, कंसिस्टेंट मर्सी ऑफ कृष्णा वर्सेस कंसिस्टेंट डिसोबीडियंस ऑफ लिविंग एंटिटी। अब यहां पर हमारी औकात क्या है भगवान के सामने, यदि कोई तीसरा व्यक्ति औकात देखने जाए कि भगवान कौन है और हमारी क्या औकात है भगवान के सामने, परंतु दोनों कंसिस्टेंट है, वो कृपा में कंसिस्टेंट हैं और हम उनका निरादर करने में कंसिस्टेंट, बिना औकात के ये बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है, बिना औकात के। तो यहां पर स्पर्धा किसके बीच में हो रही है? स्पर्धा हो रही है एक राजा, कृपालु राजा, और एक घमंडी कैदी। कृपालु राजा और एक घमंडी कैदी। तो घमंडी कैदी जो है वो राजा को बोल रहा है, कर ले जो करना है, मैं तो जेल में ही रहूंगा। औकात क्या है उसकी? एक तो जेल में पड़ा है, वहां पर चिल्ला रहा है, देखते हैं कैसे बाहर निकालता है वो। राज्य उस राजा का, जेल उस राजा का, अपराध उसने किया है राजा के विरुद्ध, राजा के पास पूरी शक्ति है, और राजा को ललकारते हुए बोलता है देख ले क्या करता है, निकाल के देख। तो वैसे ही भगवान परम कृपालु और हम यहां पर लगे हुए भगवान के विरुद्ध अपनी योजनाएं बनाते हुए, योजनाएं बना रहे हैं बद्ध जी भगवान से विमुख होने की योजनाएं बना रहे हैं। और वो योजना भी भगवान की सहायता से ही बना पाते हैं, क्योंकि जितने सारे साधन है वो तो भगवान के द्वारा दिए गए, तो उनके ही साधन को इस्तेमाल कर उनके ही विरुद्ध। फिर भी तुकाराम महाराज कहते हैं विठ्ठलाई। एक कथा इसके संदर्भ में है, एक छोटा सा बालक अपनी मां से रुद्ध हो गया, मां के ऊपर क्रोध करने लगा, और मां को गालियां देते हुए उसने एक पत्थर उठाया, उसने पत्थर उठाया मां को मारने के लिए, परंतु पत्थर बड़ा था, वो फेंकने जब गया तो उसके हाथ से वो पत्थर फिसलकर उसी के पैर पर गिरा, और जब उसी के पैर पर गिरा तो उसके मुख से क्या शब्द निकले? आई या मां। जिस मां को मारने के लिए उसने पत्थर उठाया था, वो पत्थर उसी के पैर पर जब गिरा तो उसी मां की आवाज निकली, और तुरंत मां ने चिल्लाते हुए बच्चे को पूछा लगी तो नहीं? तो तुकाराम महाराज का यह भाव है विठ्ठलाई के पीछे। हमने भगवान के जो दश अवतार, एक एक अवतार को संक्षिप्त रूप में समझने की कोशिश की, तो ये जो दश अवतार और इन दश अवतार के अलावा अनगिनत भगवान के जो अवतार हैं, ये सारे अवतारों के पीछे क्या भाव दिख रहा है? कि भगवान हमारा उद्धार करने के लिए एक सुअर का रूप लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारा उद्धार करने के लिए एक मछली का रूप, एक कछुए का रूप, आधे नर आधे सिंह। अब देखिए नरसिंह अवतार जो है, यदि हम एक दृष्टिकोण से देखें तो एक हिंदी का शब्द है अधकुचड़ा। अधकुचड़ा जानते हैं? आधा अधूरा जिसको बोलते हैं। जैसे वो एडवर्टाइज करते हैं ना रेमंड्स, बंबई में हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के पास एक बहुत बड़ा रेमंड्स का बिलबोर्ड, वो जो हाजी अली का सिग्नल है वहां पर हुआ करता था, तो जब भी हम वहां से क्रॉस करते थे तो रेमंड्स का हर समय नया कोई व्यक्ति सूट वूट पहने हुए, रेमंड्स का सूट पहने हुए, और उनका स्लोगन क्या? द कंप्लीट मैन। रेमंड्स का स्लोगन क्या हर समय होता है? द कंप्लीट मैन, मतलब ये पहनने के बाद आप कंप्लीट होगे, नहीं तो इनकंप्लीट हो। सो व्हाट एवरीवन वांट्स? कंप्लीटनेस। One wants to be a complete man. One wants to be a complete woman. Nobody wants to be in between. तो यहां पर भगवान नरसिंह देव ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, भगवान जो कि पूर्ण हैं, यहां पर अपने आप को एक अपूर्ण रूप में प्रस्तुत किए, आधे नर आधे सिंह। तो हिरण्यकशिपु, नरसिंह पुराण में वर्णन है, हिरण्यकशिपु ने भगवान का जब इस रूप को देखा तो हिरण्यकशिपु हंसते हुए मजाक उड़ा रहा है। अब देखिए उसकी औकात भगवान के सामने क्या थी। जब भगवान प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु को उस लड़ाई के दौरान भगवान ने अपने नाखूनों से पकड़ने की कोशिश की, तो ऐसे अपने हथेली में भींचा, तो जैसे अपने हथेली में भींच लिया, जब भगवान ने हथेली खोली तो हिरण्यकशिपु दिखाई नहीं दे रहा था, नाखूनों में अटका हुआ था, इतना छोटा सा था वो। यहां पे हम आपको एक अंदाजा दे रहे हैं उसकी औकात क्या थी। तो हिरण्यकशिपु जो अपने बाहों ऊपर करता था तो देवता सब मलमूत्र त्याग देते थे, वो हिरण्यकशिपु नरसिंह देव के नाखूनों में अटका हुआ और वो हंस रहा है नरसिंह देव के ऊपर कि ये क्या अधगुचड़ा रूप लेकर आए हो, कम से कम पूरा तो कुछ बनकर आते। तो ये है जीव की स्थिति, और भगवान उस जीव का उद्धार करने के लिए परवाह नहीं करते, चाहे आगे चलकर लोग मुझे कहें द इनकम्प्लीट मैन, द इनकम्प्लीट लायन, आई डोंट As long as I can redeem the conditioned living entities. तो ये हैं भगवान की कृपा, अपने अलग अलग अवतारों में आकर दिखा रहे हैं वो। अब हम जो हम रह गया था पिछली बार हमारा ये डिस्कशन, तो दशावतार के बाद कुछ अन्य विशेष अवतार भगवान के, कि यदि दशावतार में हमें इंटरेस्ट नहीं हुआ, इतने अलग अलग फैसिनेटिंग रूप में भी भगवान आकर यदि हम इतने ज्यादा जिद्दी कि नहीं, तो भगवान के ठीक है फिर मैं कुछ अन्य विशेष अवतारों में आकर अलग प्रकार से अपनी कृपा, भगवान भी छोड़ नहीं रहे, यदि हम जिद्दी तो वो महाजिद्दी। तो भगवान का एक और अवतार, विशेष अवतार, हम कहां पर बैठे हुए हैं, भगवान के धाम में, धाम अवतार। तो ये एक भगवान का विशेष अवतार है कि भगवान जहां पर अवतरित होकर जहां जहां भ्रमण कर लीला कर चले जाते हैं, भगवान उसको साधारण स्थान छोड़कर नहीं जाते, उसको धाम बना देते हैं, ताकि उस समय जो लाभान्वित हुए जब भगवान अवतरित हुए, उसके पश्चात भी जो भी नित्य काल तक उस जगह उस स्थान पर जाता रहेगा, यदि वो भक्त भी नहीं है। मथुरा वृंदावन के विषय में बताया गया है और हर एक धाम के विषय में, मथुरा महात्म्य में कहा गया है कि यदि कोई ब्रजमंडल में गिर जाता है, चलते चलते गिर गया, लड़खड़ा कर गिर गया, कोई बीच में कोई वस्तु आ गई या कोई अटक कर वो गिर गया, तो सीधा गिरा तो भगवान उसको दंडवत में स्वीकार कर लेते, यहां तक कि ब्रजमंडल में जाकर आप खाली सो जाओ, भगवान देखते हैं दंडवत दे रहा है। तो ये है धाम की महिमा। अब यहां आप लोग सोच रहे होंगे नासिक में हमें बचपन से लेके अब तक मैं कितना दंडवत दे दिया हूं। प्रवचन में बैठे बैठे भी पंचांग होता रहता है। अर्च अवतार, अर्च विग्रह, भगवान एक पत्थर के रूप में। अब देखिए, और वो भी कौन सा, अपने अपने धाम से गोलोक वृंदावन से कोई पत्थर लेकर नहीं आते। हमारे यहां आगे माइंस के पत्थर, जैसे वो एक कहावत लोग कहते हैं कि एक वो पत्थर है मंदिर में आकर भगवान बन जाता है, और एक हम हैं मंदिर में आ आकर भी पत्थर बने रहते हैं। समझे? तो भगवान ये सब इस भौतिक संसार के जो धातु हैं, पत्थर हैं, इन सब में प्रवेश कर इसे दिव्य बनाकर हमें आकर्षित करने के लिए, ताकि हम हमारी इंद्रियों को, हमारे आंखों को, कर्णों को, स्पर्श इंद्रिय, हमारे बाकी जो हाथ हैं, पैर हैं, सब का इस्तेमाल उनके सुंदर विग्रह की सेवा करने में लगाते हुए आकर्षित होकर हमारा उद्धार करें। उसके पश्चात यदि कोई कहे मुझे ग्रंथों में विश्वास, अपना अर्च विग्रह पर विश्वास नहीं, मुझे धाम क्या है ये समझ में नहीं आता, भाई आप कहते हो नासिक धाम है, तो मेरे लिए नासिक या मनमाड़, कोई मेरे लिए ज्यादा अंतर नहीं है। मनमाड़ में भी रेलवे स्टेशन है, नासिक में भी रेलवे स्टेशन है, बाकी जगहों पर भी क्या कुछ नहीं हो रहा है, यहां पर भी क्या कुछ नहीं हो रहा है। तो ग्रंथ जो हैं वो भगवान छोड़कर गए कि ग्रंथों के द्वारा हम महिमा समझें भगवान के धाम की, भगवान के अर्च विग्रह की, और उसकी चर्चा हम आज थोड़ा करेंगे कि भगवान जो ग्रंथ अवतार में आए हैं। कोई कहे कि भाई टाइम नहीं है ग्रंथों को पढ़ने का, तो भगवान कहे ठीक है नाम, मेरा नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम राम राम। आपको बहुत बड़ा विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, ग्रंथ यदि नहीं पल्ले पड़ रहे, नाम लो, केवल अपनी जिह्वा से नाम उच्चारण करो। और कोई कहता है कि मुझे उसमें भी रुचि नहीं आ रही, तो भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, हाल ही में हमने गौर पूर्णिमा मनाई, तो भगवान भक्त अवतार, चैतन्य महाप्रभु कौन है, भक्त अवतार, अपने ही भक्त बनकर। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं जैसे कि एक शिक्षक चौक हाथ में लेकर एबीसीडी लिखता है विद्यार्थियों को सिखाने के लिए, तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु नाम जप कैसे करना चाहिए, संकीर्तन कैसे करना चाहिए, किस भावना में, किस समय, किनके साथ, ये सब कुछ उन्होंने अपने उदाहरण से सिखा कर देकर गए। इसलिए ये जो नाम अवतार और भगवान चैतन्य महाप्रभु जो भक्त अवतार के रूप में आए, ये एक ऐसी कृपा है चैतन्य महाप्रभु की। कहा गया है कि अन्य युगों में भगवान अवतरित हुए, उन्होंने लीला की और वो चले गए। जैसे प्रभु राम अवतरित हुए, कुछ समय उन्होंने लीला की और फिर वो चले गए। भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, कुछ समय उन्होंने लीला की, चले गए। चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने लीला की, परंतु अपने नाम के रूप में रह गए। इस कलयुग में। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो क्यों? क्योंकि हमारी स्थिति भयावह है। हमारी हमारे लिए और कोई आशा नहीं यदि भगवान नाम के रूप में पूरे कलयुग में नहीं ठहरते। तो कोई कहे भाई धाम मेरे लिए मेरी समझ के बाहर है, अर्च विग्रह तो है ही, ग्रंथ तो समझ में ही नहीं आते, नाम के लिए समय नहीं, भक्तों का संग पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। तो श्रील प्रभुपाद ने फाइनली दे दिया, अरे खा के जा सकते हो, और प्रभुपाद ने कहा यदि इसके लिए भी कोई आनाकानी करता है तब तो फिर यमदूत और यमराज उनके द्वार खुले। और हमने देखा है इस्कॉन में कितने, हमारे ब्रजबिहारी प्रभु बता रहे थे कि कितने जो वाद विवाद करने आए कि क्यों अर्च विग्रह, क्यों ये भगवान, क्यों मार्बल के, क्यों हरिनाम, क्यों सोला माला, क्यों भगवद गीता ही, क्यों कृष्ण ही, क्यों ये। फाइनली महाप्रसाद की प्लेट सामने आती है, सारे प्रश्न भूल जाते हैं। और उनको जब पूछो कि भाई आपके कुछ प्रश्न थे, अच्छा मैं वो हलवा थोड़ा और मिलेगा, यही प्रश्न रहता है। अब एक ही प्रश्न है, थोड़ा हलवा और देंगे। अब वो इतने सारे जो उनके ज्ञानी प्रश्न थे, ये क्यों वो क्यों, एवरीथिंग इज रिजॉल्व्ड व्हेन द लॉर्ड शावर्स हिज मर्सी इन द फॉर्म ऑफ महाप्रसाद। तो ये भी भगवान का एक अवतार है। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, और हर जगह जहां पर भी श्रद्धा से भगवान को भोग चढ़ाया जाता, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान देखिए जैसे बोलते हैं नो स्टोन्स लेफ्ट अनटर्न्ड, अंग्रेजी में बोलते हैं ना कि कोई बहाना नहीं छोड़ा हमारे लिए कि हम ये बहाना कर कर कहें कि भाई मैं भगवान से जुड़ नहीं सकता, ये कारणों के वजह से मैं भगवान से जुड़ नहीं सकता, या भगवान का कौन सा ऐसा अवतार है जिससे मैं रिलेट कर सकता हूं। तो कोई ज्ञानी है उनके लिए भगवान ग्रंथ अवतार के रूप में, कोई बहुत कलाकार है तो अर्च विग्रह के रूप में, यदि किसी के पास कोई कला नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, यदि वो बिल्कुल निकम्मा, तो भगवान कहे खाने जीने के लिए खाएगा, ले मेरा महाप्रसाद खा। तो इससे समझ में आ रहा है यदा यदा ही हर तरीके से निश्चित रूप से भगवान ने प्रण ले लिया है मैं तो इसे भगवत धाम लेकर जाऊंगा। भगवान क्या बोल रहे, कर ले जो करना है, मैं तो लेकर जाऊंगा। और भगवान ठान लेते हैं तो फिर हमारी टाए टाए फिस। तो भगवान के तीन प्रयोजन शास्त्रों का निचोड़ है हमारे, कि भगवान के तीन प्रयोजन दान, कृपा और अनुकंपा। तो यदि इसका हम अंग्रेजी का अनुवाद देखें तो दान का अनुवाद है चैरिटी, कृपा का अनुवाद है मर्सी, अनुकंपा का अनुवाद है कंपैशन। तो यदा यदा ही में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान का जो भाव है वो कैसा कृपालु भाव है। तो हमारे शास्त्रों में जो भगवान ने देवताओं को नियोजित किया है हमारे लिए, 33 करोड़ देवता, वो सब हमारे मैनेजमेंट के लिए, भगवान को देवताओं की आवश्यकता नहीं है, हमें हमारे सुखपूर्वक जीवन के लिए 33 करोड़ देवता, अलग अलग उनके मिनिस्ट्री है, उनकी डिपार्टमेंट्स है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो दान हमारे ऊपर कर रहे हैं कि वर्षा, सूर्य का प्रकाश, वायु, जो भी हमारी बेसिक नेसेसिटीज है जीने के लिए, वो सब देवताओं के दान के वजह से हमारा जीवन चल रहा है। मर्सी के विषय में भगवान श्री कृष्ण, तो कृपा सिंधु उनका एक नाम है, तो भगवान श्री कृष्ण, वो उनको बताया गया है कि वो कृपा के सिंधु हैं, परंतु भगवान श्री, अच्छा, देवताओं के से ऊपर, या हम ये कहें कि ये जो तीन इमोशन है इसमें चैरिटी से ऊपर मर्सी है। जैसे कोई व्यक्ति जब दान देता है तो दान के पीछे अक्सर भावना क्या होती है, चलो मेरा योगदान तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में, तो भाई मेरा भी नाम शामिल कर लेना। तो देवताओं की प्रवृत्ति क्या है, हम दान दे रहे हैं तो थोड़ी हमारा भी गुणगान करो, चलो ये यज्ञ करो, ये उपासना करो, ये अनुष्ठान इत्यादि। तो जो दान देता है वो कुछ बदले में मान सम्मान मांगता है, कृपा के पीछे वो भावना नहीं है। कृपा के पीछे क्या भावना है, निस्वार्थ भावना। परंतु अनुकंपा, ये स्वयं भगवान अपने मुख से कहते हैं कि ये जो भावना है अनुकंपा की, ये भावना केवल मेरे शुद्ध भक्तों में रहती है। और अनुकंपा का अर्थ क्या है, दूसरों के दुख को देखकर कंपित हो जाना, उसको कहते हैं अनुकंपा। और ये भगवान से भी बड़े भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान कह रहे हैं कि वो जब देखते हैं कि बद्ध जीव त्रस्त हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो उनके अंदर ये अनुकंपा का भाव आता है। और ये टीका है बलदेव विद्याभूषण की, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि भगवान जब अर्जुन को कहते हैं यदा यदा ही, तो भगवान अर्जुन को एक बहुत ही अलग प्रकार का अर्थ बता रहे हैं। तो हम यदा यदा ही के इस अर्थ को समझने की कोशिश करें, अब चैरिटी, मर्सी और कंपैशन के दृष्टिकोण से। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, जब जब मुझे अपनी विशेष कृपा देनी होती है तब तब मैं अपने विशेष प्रतिनिधियों को भेजता हूं। तो यहां सर्वोच्च अर्थ यदा यदा ही का बलदेव विद्याभूषण ये दे रहे हैं। और इसके ज्वलंत उदाहरण है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की कि कोई आवश्यकता नहीं थी श्रील प्रभुपाद को, वृद्ध अवस्था में 70 वर्ष की उम्र में वृंदावन धाम, और वृंदावन धाम में राधा दामोदर मंदिर जो कि रास स्थली के निकट, सेवा कुंज के निकट, वहां उस उम्र में उस स्थान को छोड़कर, जैसे राधानाथ महाराज अक्सर अपने प्रवचन में कहते हैं, प्रभुपाद लेफ्ट द हेडक्वार्टर्स ऑफ डिवोशन टू गो टू द हेडक्वार्टर्स ऑफ डिग्रेडेशन, न्यूयॉर्क। क्यों, अनुकंपा, अनुकंपा किसके लिए, उन बद्ध जीवों के लिए, हम सब जैसे बद्ध जीवों के लिए श्रील प्रभुपाद अपना वृंदावन धाम ब्रजवास छोड़कर वो गए अमेरिका, और वहां, अरे बोल, और वहां हरे कृष्ण, तो प्रभुपाद गए जिनको वो जानते तक नहीं थे। क्या हमने प्रभुपाद को कभी जानने की कोशिश की? लेकिन प्रभुपाद हमको न जानते हुए भी हमारे ऊपर कृपा बरसाने के लिए प्रभुपाद रात रात जागकर, रात रात भर जागकर ग्रंथों का अनुवाद, इतने सुंदर अर्च्य विग्रह की पूजा, ये कृष्ण भावनामृत की पद्धति, इतने सारे मंदिर, इतने भक्त, हरिनाम संकीर्तन, क्या कुछ नहीं। तो भगवान जब यदा यदा ही कह रहे हैं तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, मैं अपनी विशेष कृपा बांटने के लिए कलयुग, क्योंकि विशेष पतित लोग हैं कलयुग के, तो जो विशेष पतित है कलयुग के उनकी विशेष सदगति के लिए मैं अपने विशेष प्रतिनिधि श्री प्रभुपाद जैसे उनको मैं भेजता हूं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस यदा यदा ही में भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद जैसे प्रतिनिधियों के विषय में कह रहे हैं। तो ये तो हुआ यदा यदा ही का तात्पर्य। अब भगवान आगे कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य। तो अब धर्मस्य, हालांकि ये जो एक शब्द है धर्म, इसके विषय में जो हमारे शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से इसकी व्याख्या हुई है, तो हम संक्षिप्त रूप में ही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्यादा विस्तार में कलयुग में यदि कहा जाता है तो फिर भी भूल जाते हैं कि अरे शुरुआत कहां से हुई थी। अभी मान लो यदि ये जो श्लोक चल रहा है हमारा, इसकी हम अगर 10 पार्ट ले लें, एक एक अक्षर, एक एक शब्द ऐसे कर 10 पार्ट ले लें, तो 11वें पार्ट के बाद भूल ही जाएंगे कि शुरुआत कहां से हुई थी। इसलिए हम संक्षिप्त रूप में ये धर्म की व्याख्या क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने अलग अलग जगह पर श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, उनके कॉन्वर्सेशंस में जो डेफिनेशंस दिए धर्म के, तो ऐसे 5 डेफिनेशंस को हमने एक साथ लाकर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ये 5 डेफिनेशंस इस प्रकार के हैं। सबसे पहला डेफिनेशन प्रभुपाद कहते हैं, धर्म का अर्थ क्या है? डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ कृष्णा। धर्म मतलब भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से जो भी शब्द निकलते हैं वो हो गए धर्म। इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर ह्यूमन, श्रील प्रभुपाद कहते हैं धर्म की व्याख्या है हम मनुष्यों के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जीवन कैसे जीना है, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ धर्म हमें सिखाता है। श्रील प्रभुपाद ने एक और तीसरी व्याख्या की, कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर ऑफ द सोल, जीव का वास्तविक स्वधर्म क्या है या उसका, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसके नेचर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर। 4th, कल्चर विच डिस्क्रिमिनेट्स ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समाना। और 5वां डेफिनेशन प्रभुपाद दिए, बहुत इंटरेस्टिंग, प्रिपरेटरी कोर्स टू प्रिपेयर फॉर डेथ एंड सिक्योर नेक्स्ट लाइफ। प्रभुपाद कहते हैं दिस इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म। सो दीज आर दी 5 डेफिनेशंस ऑफ धर्म अकॉर्डिंग टू श्रील प्रभुपाद। तो अब हम एक एक कर अब इस पर थोड़ा इलैबोरेट कर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ कृष्णा, और इसके लिए सिक्स्थ कैंटो श्रीमद् भागवत का ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम नवै विदुर ऋषयो नापि देवा न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या कुतोन विद्याधर चारणादय। इस श्लोक में ये श्लोक बहुत इंटरेस्टिंगली यमराज जी ने कहा है। सब वाकिफ हैं यमराज जी से? तो यमराज जी ने यह श्लोक कहा अजामिल उपाख्यान में, जब यमदूतों को रोका गया, विष्णु दूतों ने रोका अजामिल को नरक नहीं ले जा सकते क्योंकि अजामिल ने मरते मरते नारायण का नाम लिया, नहीं ले जा सकते, रोक दिया यमदूतों को। तो यमदूतों को रोक दिया तो यमदूत परेशान अब कुछ कर नहीं सके विष्णु दूतों के सामने। पहली दफा इतने सुंदर उन्होंने व्यक्तियों को देखा और उनकी वाणी सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए, परंतु परेशान हो गए कि अब तक तो हमको लग रहा था कि हमारे यमराज वो सर्वस्व हैं सबके। तब वो यमराज जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई ये क्या क्या माजरा है, अब तक तो हमको ये लग रहा था। तो यमराज इतने प्रसन्न होते हैं कि अब पहली दफा यमदूत के साथ मेरा भागवत डिस्कशन होगा। क्यों? क्योंकि अब तक यमदूत के साथ यमराज जी का डिस्कशन क्या होता था? उसको काटो, इसको जलाओ, इसको फाड़ो, इसको चीर फाड़, इसको मारो, ये सब बस ये कॉन्वर्सेशन यमराज। और यमराज जी महाजन हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो यमराज जी हर समय आतुर रहते थे कि कब भागवत डिस्कशन मेरा होगा किसके साथ। तो यहां पर अब ये लोग आकर पूछ रहे हैं कि बताओ। तब फिर यमराज जी इतने प्रसन्न एक्सटेसी में, भाव विभोर अवस्था में ये श्लोक यमदूतों को कह रहे हैं कि तुम इस भ्रम में अब तक थे कि मैं सर्वस्व हूं, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरे स्वामी कौन है और वो स्वामी उनका पद क्या है और उनके मुख से निकले हुए शब्द, ये अजामिल ने तो उनका नाम लिया है, उनके मुख से जो भी कुछ निकलता है वो क्या होता है। तो ये इसका पूरा ट्रांसलेशन है। यमराज बोल रहे हैं, रियल रिलीजियस प्रिंसिपल्स आर एनेक्टेड बाय द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड ऑल्दो फुल्ली सिचुएटेड इन द मोड ऑफ गुडनेस इवन द ग्रेट ऋषिज हु ऑक्यूपाई द टॉप मोस्ट प्लैनेट्स कैनॉट एसरटेन द रियल रिलीजियस प्रिंसिपल्स नॉर कैन द डेमीगॉड्स और द लीडर्स ऑफ सिद्धलोका टू से नथिंग ऑफ द असुरस ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स विद्याधरस एंड चारणा। तो यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत यमराज जी क्या बोल रहे हैं, इससे यह समझ में आ रहा है कि कलयुग में जो तथाकथित अपने आप को भगवान बोलकर कह देते हैं कि मैं हूं तुम्हारे उद्धार के लिए भेजा हुआ अवतार, बहुत लोग बोलते हैं कि वो जो राम, वो जो कृष्ण अब मेरे रूप में आए, और पूछा जाए कि भाई पिछली बार जो डेंटिस्ट के साथ आपका अपॉइंटमेंट था वो कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ था, वो कौन सी आपकी लीला चल रही थी, बोल देते वो भी लीला ही है मेरी, रूट कैनाल लीला है मेरी, मसूड़ों में कीड़े लीला है मेरी, कीड़ों पे कृपा। तो यहां यमराज जी बोल रहे हैं कि ये बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं सत्वगुण में विद्याधर चारण, ये सब इनके इनके दायरे में भी नहीं है क्या धर्म की स्थापना करना, और साधारण तुच्छ मनुष्य वगैरह तुच्छ ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स उनको तो डिस्कशन में मत लो, बाहर निकालो उनको, लिस्ट से बाहर निकालो। मतलब जो जो घूमते फिर रहे ना भगवान बोलते हुए कलयुग में, यहां यमराज जी उन सबको लिस्ट से बाहर निकाल रहे। तो वो क्या बोल रहे हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, प्रणीतम का अर्थ है बोलना, जो भगवत, भगवान ने बोला, भगवान के श्रुमुख से जो ध्वनि निकलती है वो सब है क्या? धर्म. डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ कृष्णा. अब भगवत गीता क्या है? यदि इस श्लोक से हमें यह समझ में आ रहा है कि श्री भगवान के मुख से जो कुछ निकलता है वो धर्म हो जाता, तो भगवान का गीत भगवत गीता. तो यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं भगवत गीता के संदर्भ में, और ये जो शब्द है धर्म इसके संदर्भ में. एक आपके सामने पहेली या क्विज, भगवत गीता 1.1, भगवत गीता 18.78, क्या समझ में आ रहा है? 18.78 ये भगवत गीता का कौन सा श्लोक है? आखिरी श्लोक है, आखिरी 18 अध्याय है. बाय द वे भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय. तो 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक 78th श्लोक और 1.1. तो यदि हम, अच्छा किसको याद है पहला श्लोक, किसको याद है? हाँ एक मिनट बोलिए, आप बोलिए. जय हरि बोल, तालियां. 18.78 किसको याद है? हाँ बोलिए माता जी. हरि बोल. आशा करते हैं आपको मालूम होगा, क्योंकि कलयुग में क्या है कि कुछ भी श्लोक बोल दीजिए, बोल दिए आखिरी श्लोक है, मालूम ही नहीं लोगों को. अच्छा बहुत अच्छा बोलते हैं आप. एक हमारे बंबई के डिवोटी हैं, वो ब्रह्मचारी हैं अभी, पहले उनका नाम हरिदास प्रभु था, अभी दीक्षित नाम मैं भूल गया क्या था. तो वो दादर ब्रिज पर भगवत गीता मैराथन के समय बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने आकर भगवत गीता देखना, तो उनको देख रहा था कि ये धोती कुर्ते में तिलक लगाए हुए, तो इस्कॉन, इस्कॉन के सदस्य हो? हाँ. उन्होंने कहा इस्कॉन. तो पढ़िए गीता, पढ़िए जो बांट रहे हो. तो उन्होंने कहा हाँ पढ़िए. अच्छा ठीक है, बताओ पहला श्लोक कौन सा है, पहला श्लोक बताओ. तो उन्होंने सीधा जैसे हमारे प्रभु जी बोले, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युस, एकदम पानी की तरह सुना दिया. और वो भगवत गीता हाथ में ना, तो चेक कर रहा था वो, उसको नहीं आता था क्योंकि वो चेक कर रहा था. तो देखा अच्छा ठीक है, लास्ट श्लोक बताओ, लास्ट श्लोक. तो वो लास्ट श्लोक शुरू हो गया, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धर्म. चेक किया लास्ट श्लोक, गया कितने किए, खरीद लिए उसने, कन्विंस हो गया. और वो थैली में पैक कर कर वो 70 रुपए देकर गीता लेकर गया. ये प्रभु जी बोले भगवान ने बचा लिया मुझे, केवल यही दो श्लोक आते थे. तो उनको केवल यही दो श्लोक आते थे, यदा यदा ही, जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तक भगवान मदद करते हैं. तो अब यदि हम देखें तो भगवत गीता की शुरुआत होती है ध इस अक्षर से और अंत मतिर मम. तो ये ऑब्जर्वेशन से भी क्या समझ में आ रहा है, पूरे भगवद गीता है क्या, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। अब धर्म ग्रंथ जो भी हैं, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम, जितने पुराण उपनिषद इत्यादि, वो सब भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी है। तो ये तीन प्रमाण जिनके विषय में हमने अक्सर हमारे प्रवचनों में चर्चा की है कि एक है प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान, हम भगवान की सृष्टि को देखकर भी भगवान के विषय में थोड़ा ज्ञान हो सकता है। जैसे बहुत से जो ऐसे जंगली जाति के हैं वो भगवान के ग्रंथों को नहीं पढ़ पाते, लेकिन भगवान की सृष्टि को प्रत्यक्ष रूप में देखकर भगवान का कुछ अंदाजा उनको आ जाता है। और फिर कई जो हैं वो अनुमान लगा लगा कर भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, परंतु जो सर्वोच्च स्थिति है भगवान को जानने की, जो बहुत ही सरल तरीका और संपूर्ण तरीका, वो है शब्द प्रमाण। तो जो भगवान की वाणी है, धर्म की जो पहली व्याख्या है धर्म ग्रंथ, कि भगवान के श्रीमुख से निकले हुए शब्द ग्रंथों के रूप में जो है, वो शब्द प्रमाण उनको कहते हैं। अब शब्द प्रमाण, बलदेव विद्या भूषण बहुत सुंदर तरीके से शब्द प्रमाण के अंदर जाकर बता रहे हैं कि भगवान के ही मुख से निकले हुए शब्दों को हमको किस प्रकार से समझना है, तब जाकर धर्म समझ में आएगा। क्यों? ये दो चीज वो कहते हैं, एक है ग्रंथों के टेक्स्चुअल मीनिंग, जो टेक्स्ट है। जैसे हमने कई बार उदाहरण दिया है कि लोग केवल भगवत गीता के श्लोक ले लेते हैं परंतु कॉन्टेक्स्ट को नहीं लेते और उन श्लोक को गलत तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं और कहते हैं भगवान बोल रहे हैं सर्वस्य चा, सब चाय पियो, मया चापी तोया चापी, मैं भी चाय पी रहा हूं ले तू भी पी। तो टेक्स्चुअल मीनिंग को लेना, तो कोई कह सकता है कि धर्मम तो साक्षात, भाई मैं तो डायरेक्ट वर्ड्स भगवान के रिपीट कर फॉलो भी कर रहा हूं। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि हमको टेक्स्चुअल मीनिंग के साथ कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग भी समझना। जैसे कि श्रीमद् भागवत में हिरण्यकशिपु सातवें स्कंद में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का वध जब होता है तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के सगे संबंधियों को दिव्य ज्ञान देने के लिए जाता है। और क्या ज्ञान? कि अरे ये तो शरीर था, ये तो शरीर मर गया, वासांसि जीर्णानि यथाविह नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत। इस प्रकार का ज्ञान हिरण्यकशिपु दे रहा था, हम शरीर थोड़ी हैं और अभी अभी तपस्या करके इतना बड़ा अजर अमर शरीर बनाने के लिए गया हुआ था, तो अभी वो इसके बाद जाने वाला, अभी तक गया नहीं था, इसके बाद जाने वाला है वो। तो वही हिरण्यकशिपु जो देहात्म बुद्धि, भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय का ज्ञान है, उस ज्ञान को हिरण्यकशिपु उसी प्रकार से जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है भगवान दे, वैसे ही प्रस्तुत किया, परंतु उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग यदि समझने जाएं, केवल आप वर्स लो तो वर्स में आपको क्या समझ में आएगा, एकदम ठीक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमारे दिए गए, लेकिन उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग बिल्कुल अलग। वो वहां पर उनको देहात्म बुद्धि से बाहर निकालने के लिए नहीं, उसके पीछे उसको केवल उनका विलाप चुप करना था और ये उनके सामने प्रस्तुत करना था कि देखो मैं कंट्रोलर हूं और मैं तुम्हारे विलाप को कंट्रोल करूंगा। नरसिंह पुराण में यह वर्णन है कि वो क्यों इस प्रकार का दिव्य ज्ञान दे रहा था, तथा कथित उसके अनुसार दिव्य ज्ञान। तो हम कभी भी गीता कोर्स में ये कोट नहीं करते, सो वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, हु सेज हिरण्यकशिपु, नहीं, टेक्स्चुअल मीनिंग वही होगा, but contextual meaning. जैसे दो व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप चल रहा था, एक दूसरे से पूछता है पहले हाथ काटूं सर काटूं, दूसरा कहता है सर काट फिर हाथ काट, तो उसने सर काट दिया, फिर पूछता है हाथ आधा काटूं कि पूरा काट, पूरा काट। अब ये आप लोग क्या सुनाई दे रहा है आपको, ये टेक्सचुअल मीनिंग सुनाई दे रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको, मारकाट चल रही है ना, ये दो दर्जियों के बीच में वार्तालाप चल रहा है। दो टेलर्स, वो अब गर्दन के यहां पे काटना है, फुल स्लीव करना है, हाफ स्लीव करना है, यहां से काटना है, वो सब डिस्कशन चल रहा है। आपको लग रहा होगा आप अगर कमरे में प्रवेश नहीं किया, आपको मालूम नहीं अंदर कौन क्या डिस्कशन कर, खाली आप सुन लो बाहर से, पहले सर काटूं कि हाथ काटूं, आधा हाथ काटूं कि पूरा, आप तो पुलिस को फोन करोगे, यहां पर तो भैया षड्यंत्र रचा जा रहा है, खून खराब हो रहा है। जैसे एक बच्चा अपने पिताजी को एक हफ्ते से बोल रहा था, पिताजी अगले सोमवार को एक स्मॉल गेट टुगेदर है स्कूल में, आप आएंगे? तो पिताजी हाँ क्यों नहीं, तो हर दिन बोलता था सोमवार को स्मॉल गेट टुगेदर है, सोमवार को स्मॉल गेट टुगेदर। तो पिताजी इतनी बार बोल रहे हैं, फिर सोमवार आ गया तो पिताजी थोड़ा भूल रहे थे, बच्चा बोल पिताजी आज सोमवार स्मॉल गेट टुगेदर, हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ। तो पिताजी ने पूछा एक बात बता, एक तो तेरा गेट टुगेदर सोमवार को कैसे, गेट टुगेदर तो कोई छुट्टी के दिन होना चाहिए, वीकेंड पे होना चाहिए, तो सोमवार को कैसे तेरा, और ये तू स्मॉल गेट टुगेदर स्मॉल गेट टुगेदर, ये स्मॉल गेट टुगेदर क्या है? हाँ तीन लोगों का ये खाली, मैं आप और प्रिंसिपल। तो अब समझ में आया कि कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है, स्मॉल गेट टुगेदर का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है। शाम के समय मां बैठी हुई थी सब्जी काट रही थी, बच्चा होमवर्क कर रहा था, वीडियो गेम भी खेल रहा था, मां देख रही है बीच बीच में वीडियो गेम खेल रहा है, होमवर्क का नाटक कर रहा है, तो मां सब्जी काटते हुए पूछती है पप्पू टीपू सुल्तान कौन था बता। मुझे क्या पता कौन था, पप्पू ने कहा मुझे क्या पता कौन था, पढ़ाई पे ध्यान दिया कर। तो अब पप्पू पूछता है, पप्पू माते पूछता है मम्मी सविता आंटी कौन है, तो मां बोलती मुझे क्या पता, पापा पे ध्यान दिया करो। तो टेक्सचुअल मीनिंग कुछ और होता है, कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग कुछ और होता है। अभी आप यहां ध्यान दो, तो एक है अब टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। तो बल्लभ विद्याभूषण कह रहे हैं कि यहां पर शब्द प्रमाण में जो टेक्सचुअल मीनिंग, हाँ टेक्सचुअल मीनिंग है, केवल अगर उसको पढ़ोगे आप तो आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, वो श्लोक वो ग्रंथ की टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग आएगी, परंतु कॉन्टेक्चुअल मीनिंग से प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। एक कहानी से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। एक स्कूल में टीचर, बच्चे का नाम है अर्णव, अर्णव को टीचर कहती है अर्णव इन योर बैग यू हैव टू एप्पल्स एंड आई गिव यू टू मोर एप्पल्स, नाउ हाउ मेनी एप्पल्स यू हैव। अर्णव कहता है 5। टीचर परेशान, अगेन आई आस्क द क्वेश्चन, इन योर बैग यू हैव टू एप्पल्स, आई गिव यू टू मोर एप्पल्स फ्रॉम माय साइड, हाउ मेनी एप्पल्स यू हैव? अर्णव बोलता है 5 एप्पल्स। तो अभी उसको लगा ये बहुत बुद्धिमान मेरा विद्यार्थी है, तो सबके सामने फजीती हो रही थी उसकी, प्रिंसिपल भी वहां, चीफ गेस्ट भी वहां, तो वो परेशान अब किया। अब तो वो पूछती है, अच्छा अर्णव मैं तुझे 2 अमरूद देती हूं और तेरे बैग में 2 अमरूद है, कितने अमरूद हुए? 4। गुड बाय, गुड बाय। अच्छा अब मैं पहला वाला प्रश्न, 2 एप्पल्स इन योर बैग, आई गिव यू 2 एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स? 5। वो क्या रहा है इसको? तो वो पूछती है व्हाई यू आर सेइंग 5 एप्पल्स व्हेन यू आर सेइंग 4 गुआवास व्हेन इट कम्स टू गुआवास। तो अर्णव बोलता है बिकॉज आई हैव 3 एप्पल्स इन माय बैग। सो इफ यू गिव मी 2 एप्पल्स, आई हैव 3 एप्पल्स इन माय बैग, इट विल कम टू 5 एप्पल्स। सिंपल, दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। टीचर वॉज गोइंग फॉर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, सो देर इज शी वॉज टेक्निकली राइट, प्रैक्टिकली रॉन्ग। डिड यू अंडरस्टैंड? सो मेनी टाइम्स बलदेव विद्याभूषण सेज इन शब्द प्रमाण यू मे रीड अ सर्टन वर्स, यू कैन अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटी ऑफ दैट वर्स एंड यू मे प्रेजेंट इट एज टेक्निकली बींग राइट, बट ग्रेट सोल्स वर तत्वदर्शी। इसलिए भगवान ने गीता में इसी अध्याय में क्या कहा है, किसके पास जाओ अर्जुन तुम? तत्वदर्शी, जिसने तत्व का दर्शन किया है, मीन्स ही हैज अंडरस्टूड एसिमिलेटेड द एसेंस ऑफ द तत्व, परम तत्व, और जब उसको प्रस्तुत करता है तो उसको कहते हैं कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। जैसे कि प्रभुपाद, अब प्रभुपाद को हिप्पी, जो हिप्पी थे नशेड़ी, सब प्रकार के नशे किए हुए वहां पे बैठे हैं, कोई वो कोकेन एलएसडी मैरिजुआना ये सब लेके बैठे, वो पूछते हैं सो स्वामी जी व्हाट इज दिस गोलोक वृंदावन यू आर टॉकिंग अबाउट? तो प्रभुपाद ने अब देखो क्या रिप्लाई दिया उनको। प्रभुपाद ने कहा गोलोक वृंदावन इज लाइक एन ओशन ऑफ एलएसडी। अब ये कोई शास्त्र में डिस्क्रिप्शन गोलोक वृंदावन का नहीं है कहीं, बट दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग। और वो लोग ने जब सुना, हू यू वुड लाइक टू गो टेल समथिंग मोर अबाउट इट, तो प्रभुपाद ने वहां से उनको कनेक्ट किया, जोड़ा। जैसे हमारे वैशेषिका प्रभु हैं, वो बहुत ही प्रभुपाद के बहुत इंटेलिजेंट सीनियर डिसाइपल हैं, मतलब विटी आंसर्स के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं वो वैशेषिका प्रभु। तो न्यूयॉर्क की रथ यात्रा में एक क्वेश्चन आंसर्स बूथ होता है, मैं भी एक बार वो क्वेश्चन आंसर्स बूथ में देखने गया था, कि क्योंकि न्यूयॉर्कर्स आते हैं वहां पे क्वेश्चन पूछने के लिए, तो बहुत एक ऐसे व्यक्ति को वहां पर वो बिठाते हैं बूथ पर, जो जिसको बोलते हैं ना हाजिर जवाबी, वैसा व्यक्ति। तो वैशेषिका प्रभु बैठे थे, तो एक ऐसे ही न्यूयॉर्कर, 2-3 जो न्यूयॉर्कर के उनके टीम, वो लोग आए और उन्होंने बोला व्हाट इज दिस हरे कृष्णा? आप कहिए क्या हरे कृष्णा, व्हाट इज हरे कृष्णा मीन? अब उनको अगर वो सुनाना शुरू करते, हरे कम्स फ्रॉम हरा मीन्स राधा रानी, कौन है भाई, क्या कौन सी भाषा बोल रहा है, तो उन्होंने उनकी भाषा में हरे कृष्णा को कहा, हरे कृष्णा मीन्स आई नीड हेल्प, यू नीड हेल्प, लाया सो चैंट हरे कृष्ण। तो दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। अब इसको आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते। आप बोलोगे ठीक है, कल से मेरे को भी जो इधर नासिक में पूछेगा हरे कृष्णा का मतलब क्या है, मदद की जरूरत है। नहीं, जैसे कि प्रभुपाद इसके विषय में भी एक कहानी सुनाए। एक जानवरों का डॉक्टर था और जानवरों के डॉक्टर के पास एक व्यक्ति आया अपने घोड़े को लेकर, उसका उसकी गर्दन सूजी हुई थी। तो जानवरों के डॉक्टर ने हाथ लगाया, ऐसे करके चेक किया, अपने असिस्टेंट को बोला हथौड़ा लेके आ। सब लोग हथौड़ा, तो असिस्टेंट हथौड़ा लेके आए। हथौड़ा था नहीं, लोहार की दुकान से लेकर आए। हथौड़ा मारा गर्दन के ऊपर, इधर से सूजन चली गई। जा भाई, ठीक हो गया। असिस्टेंट को लगा भाई ये तो बहुत सरल है जानवरों का डॉक्टर बनना। उसने अपना क्लिनिक खोल लिया अगले महीने और उसमें क्लिनिक में अलग अलग हथौड़े रख लिया उसने। जो भी आता भाई, उसको ये दर्द है वो दर्द, हथौड़े से मार मोर के भेजता। तो वो लोग सब बोले भाई, भैया ये कौन से जानवर का डॉक्टर, ये कहां से सीखा तूने? बोले हमारे गुरुजी, वो हथौड़ा मार के ठीक करते हैं। तो गुरुजी को पूछा गया तो गुरुजी सर पे हाथ पटक कर कहे, अरे मूर्ख, वो केवल हथौड़ा उस घोड़े के लिए था, उसने कलिंगड़ खा लिया था, वो अटका हुआ था। तो होता क्या है, हम जब कुछ सुन लेते हैं तो हम लोग उसी प्रकार से अपना हथौड़ा लेके घूमते फिरते हैं। गोलोक वृंदावन मतलब ओशन ऑफ देशी दारू ताड़ी माड़ी, हम लोग अपना वर्जन कर देंगे। इसलिए ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है शब्द प्रमाण को समझने के लिए, कि बलदेव विद्याभूषण जो बोल रहे हैं कि शब्द प्रमाण का अर्थ है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्चुअल एंड द कॉन्टेक्स्चुअल। इसलिए जब तक हम टेक्स्चुअल के साथ कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग नहीं समझेंगे और दोनों को साथ में समझना है, तब तक हमको प्रैक्टिकल रेलेवेंट अंडरस्टैंडिंग उस शब्द प्रमाण की नहीं होगी। ये क्यों हम इतना डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथों को यूज कर लोग पाप कर रहे हैं। कि हमारे धर्म में कहा गया है कि काफिरों को उनका कत्ल करो, हम धर्म ग्रंथों को पढ़ पढ़कर हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि जो पाप हम कर रहे हैं वो कैसे हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया। तो ये कब होता है, जब यहां पर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को भूलकर केवल टेक्सुअल मीनिंग को, और वो भी गलत तरीके से प्रस्तुत कर रखा। जैसे कि बेटे ने कहा स्मॉल गेट टुगेदर है, स्मॉल था, गेट टुगेदर था, लेकिन जब अंदर जाकर खोजबीन की तो पता लगा वो गेट टुगेदर क्या था और वो स्मॉल का अर्थ क्या था। वैसे ही हमको भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों को भी उनको सही तरीके से समझना है, तब जाकर वो शब्द प्रमाण प्रमाण रहेगा, तब जाकर वो शब्द प्रमाण धर्म कहलाएगा, नहीं तो धर्म नहीं कहलाएगा। तो आगे शब्द प्रमाण, क्योंकि शब्द प्रमाण का अर्थ क्या है, हम उसका श्रवण कर रहे हैं। तो बलदेव विद्याभूषण इसके विषय में आगे कहते हैं, वो चार स्तर अब इसके शब्द प्रमाण के दे रहे हैं, श्रवणम, उसके बाद मननम, उसके पश्चात निधि ध्यासनम और वंदनम। जब हम शब्द प्रमाण को इन चार स्तरों पर पूर्ण रूपेण अपने जीवन में अपनाएंगे, तब जाकर वो शब्द प्रमाण ठीक से हमारे जीवन का धर्म बनेगा। तो श्रवणम का अर्थ तो आप समझ गए होंगे, हियरिंग। आगे बलदेव विद्याभूषण कहते हैं मननम का अर्थ है कि श्रवण करने के बाद उसके ऊपर आपको आपकी बुद्धि लगा के मनन करना है। अच्छा, वो बुद्धि बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि वो कौन सी बुद्धि होगी, जब आप ठीक से श्रवण करोगे तो वो बुद्धि भगवान द्वारा दी गई बुद्धि होगी, ददामि बुद्धि होगा। क्योंकि जब हम मनन करते हैं तो मनन, जैसे कि मान लो आपने गीतामृत का प्रवचन सुना, बलदेव विद्याभूषण के ये सारे सिद्धांत सुने, उसके बाद जब आप घर जाकर उसके ऊपर मनन करोगे तो आपको आपकी तरफ से प्रयास करना होगा मनन करने के लिए। अर्थात आप आपकी तरफ से बुद्धि लगाकर उस पर ध्यान दोगे दूसरी दफा तीसरी दफा। तो जब आप प्रयास दिखाओगे आपका सिंसियरली, तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि वो प्रयास रूपी आपकी बुद्धि जो आपको मननशील बनाएगी वो भगवान द्वारा दी गई होगी। और जब उस प्रकार का मनन होगा श्रवण के पश्चात, तब फिर जो तीसरा स्तर है बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, फिर वो जीवन में आप अप्लाई करोगे निधि ध्यासनम, तब उसका एप्लीकेशन आएगा। नहीं तो जो श्रवण है कई बार तो एक कान से दूसरा कान पूरा फ्री हाईवे निकल रहा है, आ रहा है जा रहा है, कभी एक कान से घुस के उधर से निकल रहा है, कभी लेफ्ट से राइट से जा रहा है, राइट से लेफ्ट से निकल, कभी दोनों में घुस ही नहीं रहा है, दोनों में शटर लगा दिया। तो मनन की तो कोई आशा ही नहीं है, फिर भूल जाओ एप्लीकेशन, तो फिर बोली जाओ। और फिर वंदनम जो हाईएस्ट स्टेज है शब्द प्रमाण का, वो क्या है, एक्सप्रेशन, कि हम श्रवण कर मनन कर अप्लाई कर अपने जीवन को ढाल कर, किसमें, कृष्ण भावनामृत में ढाल कर, फिर भगवान को फिर से क्या ऑफर करते हैं, जो भगवान से मिला, क्या मिला, शब्द। तो वंदनम का अर्थ क्या है, प्रेयर्स, जो हम वापस से भगवान, जैसे कि समुद्र का जो जल है वही वाष्प में परिणित होकर बादलों में जाता है और वर्षा के मौसम में वही वापस वर्षा के रूप में वापस नदियों से समुद्र में। तो ये है शब्द प्रमाण का कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट सर्किट क्या है बलदेव विद्याभूषण के अनुसार, एक तो टेक्सचुअल से कॉन्टेक्सचुअल, अर्थात टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग से प्रैक्टिकल रेलेवेंट अंडरस्टैंडिंग, और फिर श्रवण मनन निधि ध्यासनम और वंदनम। क्योंकि इसके अंदर जो लास्ट वंदनम है बलदेव विद्याभूषण उसके साथ क्या एस्टैब्लिश कर रहे हैं, कि वंदनम कब हो पाएगा, जब आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम होगा। किसी की वंदना कोई प्रेम से ही कर पाएगा, तो जब वंदना, जब प्रेम आपके अंदर होगा तब जाकर आप वंदनम एक्सप्रेस कर पाओगे, अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर पाओगे। और फिर धर्म की स्थापना पूर्ण रूपेण, ये जो पहला डेफिनेशन है धर्म का, जो श्रील प्रभुपाद कहे हैं, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। अब धर्म की जो दूसरी व्याख्या दी गई है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जो कि श्रील प्रभुपाद ने ये उदाहरण दिया है, तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल में आप देखो, सबसे पहले अगर आपने कोई वॉशिंग मशीन खरीदी तो वॉशिंग मशीन का इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, उसमें वो फीचर्स, इंस्ट्रक्शन मैनुअल क्या, फीचर्स पहले बताते हैं कि ये इसके फीचर्स क्या हैं, कि एक साइड से आप कपड़ा डालो इस्त्री कर दूसरे साइड से बाहर निकलेगा, पता नहीं ऐसी वॉशिंग मशीन आजकल आती, सूख के बाहर निकलेगा, कम से कम इतना तो होता ही है ना, कपड़ा सूख के बाहर आ जाता, तो उसके फीचर्स बताए जाते। वैसे ही हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो हमारे मनुष्य शरीर के फीचर्स बताते हैं, कि ये तुम्हारी दो आंखें हैं, ये तुम्हारे हाथ हैं, पैर हैं, और ये जो तुम्हारी खोपड़ी है उसके अंदर एक बुद्धि है, जो कि जानवरों को नहीं दी गई वैसी बुद्धि। तो लोग क्या है, मान लो वॉशिंग मशीन के सारे फीचर्स देख लिए, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है वॉशिंग मशीन का, वो ही नहीं देखा। कौन सा है? कपड़े धोने का। तो बाकी सारे फीचर्स वॉशिंग मशीन के, अरे इस पे तो हम लोग बैठ के अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, टेबल के जैसे यूज हो सकता है, डाइनिंग टेबल के जैसे यूज हो सकता है, स्टडी टेबल के जैसे यूज हो सकता है। दरवाजा अगर कुंडी नहीं है तो दरवाजा के आगे लगा दो, दरवाजा नहीं खोलेगा। ये सब के लिए नहीं वॉशिंग मशीन। तो मान लो किसी ने सारे फीचर्स पढ़ लिए, मेन फीचर उसका कपड़े धोने का, वो तो पढ़ा ही, जैसे सेलफोन आजकल लोग लेते हैं मोस्टली, बाकी सारे फीचर्स देखते हैं, कोई जाके सेलफोन में जाके ये पूछता है, अरे भाई कॉल कर सकता हूं कि नहीं? कभी कोई सेलफोन खरीदने जाता है, पूछता है उसको, कॉल होता है ना, रिसीव कर पाऊंगा कि नहीं? तो बोले पागल आदमी, मतलब अगर किसी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो उसको पागल कहेंगे। तो क्या क्वेश्चन, इसके अंदर कैमरा है कि नहीं, इसके अंदर वो वीडियो कैमरा है कि नहीं, इसके अंदर ये फीचर वो फीचर ये सब, और कोई 1% भी नहीं पूछता उसका मेन फीचर क्या है, उसके लिए कोई। वैसे ही हो क्या रहा है कि कलयुग में जो हमको ये मशीन मिली है, शरीर रूपी मशीन, तो ये मशीन के बारे में सब कुछ जानकारी यहां वहां से, लेकिन इसके अंदर जो मेन धर्म को जानने की जो फैसिलिटी फिट की गई है अंदर बुद्धि हमारी, उसके बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद ने जो बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शन मैनुअल का उदाहरण दिया। फिर बेनिफिट्स ऑफ द मशीन, कि जब उसके मेन फीचर का आप इस्तेमाल करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये भी हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं। तो जब हम मनुष्य जीवन का सदुपयोग करेंगे तो उसके बेनिफिट क्या है, जैसे कि वॉशिंग मशीन का सदुपयोग करेंगे तो बेनिफिट क्या। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, फीचर्स जान लिए, बेनिफिट्स क्या है, अब कौन कौन सी बटन दबानी है, हाउ टू यूज, डायरेक्शंस फॉर यूज। तो वैसे ही हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं हमें कि क्या करना है क्या नहीं करना, कहां जाना है कहां नहीं जाना, क्या देखना है क्या नहीं देखना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, अब सब डिटेल्स बताया गया है। और ये जो चौथा है, वार्निंग्स इन रिगार्ड्स टू मिसयूज। तो मैनुअल में आप देखोगे कि बड़े रेड क्रॉस से लिखा हुआ होता है, यहां उंगली मत डालना, है ना, और उसको एकदम बोल्ड लेटर में लिखा जाता है, लाल इंक में लिखा जाता है, स्टैट्यूटरी वार्निंग, यहां पे उंगलियां मत करना। तो वैसे ही हमारे धर्म ग्रंथ वो हमको स्टैट्यूटरी वार्निंग देते हैं कि कहां पर क्या आपको नहीं करना, सबसे पहले वो सब बताया जाता है। अभी जनरली इंस्ट्रक्शन मैनुअल में एक बहुत दो तीन पैराग्राफ के बाद ये एक वार्निंग का कॉलम, लेकिन कलयुग में हमारी स्थिति ऐसी है कि हमको ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल देते ही सबसे पहले बताया जाता है कि क्या नहीं करना है, पहले इंसान बनो क्या नहीं करके, फिर उसके बाद में कैसे इसका सदुपयोग करना। तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर ये उदाहरण देते हुए धर्म की तुलना उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल से की है। अगर हम इस स्तर पर भी धर्म ग्रंथ को पढ़ना शुरू करें तो हम अपने जीवन में धर्म को ला सकते हैं। तो अभी हालांकि आज मैं सोच रहा था कि पांचों कवर करेंगे और बाकी के तीन अभी हमारे पार्ट थ्री में अगले बुधवार को हम कवर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 9:25 हो चुके हैं और हम इसको ज्यादा विस्तार से सुनाना चाहते हैं, इसलिए संक्षिप्त रूप में नहीं सुनाना चाहेंगे, ताकि आप लोग सही से ये जो धर्मस्य की व्याख्या है इसको समझ लो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि जो भारत में पैदा हुए हैं, श्रील प्रभुपाद भी चाहते थे कि जो भारत में पैदा हुए हम लोग, हमको कम से कम हमारे धर्म के विषय में तो पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक तो हमारे धर्म के विषय में पूरी जानकारी और सही जानकारी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कि बहुत से लोग पूरी जानकारी लेने के पीछे पीछे ये नहीं देखते कि वो सही जानकारी ले रहे हैं कि नहीं। तो ये जो पांचों डेफिनेशंस प्रभुपाद ने दिए हैं, इसके अंदर कहीं पर भी कोई लूपहोल नहीं निकाल सकता कि धर्म की यहां पर व्याख्या सही और पूरी तरीके से नहीं हुई। तो इसलिए हम इसको और विस्तार से हमारे अगले सेटिंग में बाकी के जो तीन पहलू हैं धर्म के, उसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की।